24/11/2012 ये जो लिनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भोजन कार्तिक के महीने में और ये महाराज द्वारा दिया गया दीक्षा के उपलक्ष्य में नई दिल्ली। हरे कृष्णा। कृष्णदास बाबाजी महाराज का तिरुभाव है।
महान संत का प्रकट हो रहा है। हम महान संतों के विषय में आविर्भाव और तिरुभाव दोनों को ही मनाते हैं, क्योंकि जब एक महान संत का प्रकट होता है इस जगत से भगवान के नाम लौटता है, भगवान के आदेश के अनुसार किसी और स्थान में जाता है भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए। तो गौर कृष्णदास बाबा जी बहुत ही ऊंचे कोटि के संत है। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी के गुरु थे और उनका केवल एक ही विषय में रुचि थी, हरिनाम। समाज के लोगों से दूर रहते थे, केवल हरिनाम में रुचि थी। और रोज 2 लाख बार 128 माला रोज करते थे बिना किसी रुकावट के। और जब दीक्षा का समय आया तो भक्तिनाथ ठाकुर जिनके बेटे थे भक्ति सिद्धांता जी, उन्होंने कहा कि तुम गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लो। जब भक्ति सिद्धांता जी गए गौर किशोरदास बाबा जी के पास तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ। बौद्धिक दृष्टि से गौर किशोरदास बिल्कुल अनपढ़ थे और उन्होंने पूरी गीता खंडस की हुई थी और पहले उन्होंने इनकार कर दिया, कई बार जाने के बाद उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और गौर किशोरदास बाबा जी के एक ही शिष्य थे जो थे बाकी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनका आकर्षण था, उनकी रुचि थी केवल भगवान के नामों के उच्चारण में। पब्लिक लैट्रिन को उन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया था और पब्लिक लैट्रिन में बैठ कर जाप करते थे, क्योंकि वहाँ बदबू के कारण कोई आएगा नहीं, वो जाप कर सकेंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो आप सब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से यही प्रार्थना कीजिए कि आप में भी हरिनाम की रुचि बढ़े और आप भी रुचि के साथ हरिनाम का उच्चारण कर सके। श्रीमद् भागवतम के 14 स्कंद में नारद मुनि ने प्रचेतस को इस प्रकार से उपदेश दिया, किम जन्मभेद त्रिवीर वेह चौका सविता यदि के क्रमवीर वात रही प्रोक्ते कौन सो की रूपा। तो नारद मुनि इस श्लोक में कहते हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति 3 प्रकार के जन्म प्राप्त करता है। पहला जन्म है माता के गर्भ से और इस जन्म को शुक्र जन्म कहा जाता है। शुक्र का अर्थ है वीर्य और शुक्र जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी नेक्टर को। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम हरिनाम दीक्षा ग्रहण करते हैं और इस जन्म को कहा जाता है सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ब्राह्मण दीक्षा स्वीकार करते हैं और इसे कहा जाता है यज्ञ का जन्म। तो शुक्र जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी। तो शुक्र जन्म प्राप्त करके जीवन त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा जन्म है सवित्र जन्म, तो क्योंकि ये आपका दूसरा जन्म है, इस दीक्षा के समय आपको एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है जिसके साथ दास और दासी जोड़ा जाता है। जिसका अर्थ है भगवान के सेवक हो। और हमारी इस्कॉन संस्था में हरि नाम दीक्षा जब प्राप्त होती है, जब कम से कम 2 साल के लिए किसी ने 16 माला का जाप किया हो और 4 नियमों के पालन की जिम्मेदारी उठाए, कोई मांस अंडा मच्छी नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, कोई नशे की चीज नहीं, चाय कॉफी भी नहीं, और अगर गृहस्थ हो तो गृहस्थ आश्रम में भी हम जिए शास्त्र की शिक्षा के अनुसार। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, भगवत प्राप्ति संभव है अगर हम शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चले। और तीसरा जन्म जिसे यज्ञ का जन्म कहा जाता है, ये दिया जाता है, प्राप्त होता है जब हमने हरि नाम को उच्चारण किया हो और कई सालों के लिए प्रसाद में एक ब्राह्मण टेस्ट परीक्षा भी पास की हो, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। तीसरा जन्म प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति ठाकुर सेवा में जुड़ सकता है, भगवान का श्रृंगार कर सकता है, भगवान के लिए भोज प्रसाद तैयार कर सकता है। तो हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहें तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। भव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्णदास कविराज कीर्तन चरणामृत में कहते हैं, क्या हरि नाम का जाप दिन रात करो, पर अगर आप अपराधों से नहीं बचोगे तो इसका पूरा लाभ नहीं होगा। हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में होगा, पर अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, जो भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहते हैं, हमें अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में 10 नाम अपराधों का वर्णन है। हमारे संघ केंद्र में रोज इन अपराधों का उच्चारण किया जाता है। आप सब जो घर में रहते हो आप भी रोज इन अपराधों का उच्चारण या अध्ययन कीजिएगा, इस प्रकार रोज अपने आप को याद दिला सकोगे कि मुझे इन अपराधों से बचना है। हरि नाम का उच्चारण हर स्थिति में हो सकता है, पर अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहें तो इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। पहला नाम अपराध है उन वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान के सेवा में। चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचे में अगर कोई पागल हाथी को छोड़ दें तो सुंदर बगीचा खराब हो जाएगा, उसी प्रकार भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो सकता है अगर हम वैष्णव की आलोचना करें, निंदा करें। हमारे शास्त्रों में आप अनेक कथाएं पढ़ते हो जिसमें आप देखते हो कि किस प्रकार इस अपराध का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हमें निंदा आलोचना ईर्ष्या से बचना चाहिए, और अगर हम कोई कमजोरी देखते हैं उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, पर ईश्वर द्वेष से हमें बचना चाहिए। और ईश्वर द्वेष से बचोगे भक्ति का मार्ग भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। ईश्वर द्वेष के कारण भक्ति में भी रुकावट आती है। दूसरा नाम अपराध है ये सोचना कि जो देवता हैं परम भगवान के समान है या उनसे स्वतंत्र है। हम अक्सर पलते हैं उस वातावरण में क्या हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब भगवान एक ही हैं, पर जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो देखते हो कि कृष्ण भगवान है परम भगवान, एक लग ईश्वर कृष्णा और सब चैतन्य चैतन्य में कहा गया है एक ही है परमेश्वर, बाकी सब क्या है, उनके सेवक हैं। और अभी आप ब्रह्म संहिता सुन रहे थे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारण। एक ईश्वर है और अनेक अनेक ईश्वर एक है परमेश्वर। तो कृष्ण भगवान है परम भगवान, और उनकी सेवा के द्वारा 33 करोड़ देवता देवियों के प्रति जो हमारा आभार है उसको भी चुका देते हो। जब कई बार भक्त जुड़ते हैं इस संसार के साथ, तो उनके मन में यह भय रहता है, शंका रहती है कि अगर हम केवल कृष्ण की भक्ति करें तो देवताओं को उदास तो नहीं करेंगे। तो शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पूरे पेड़ में उसका प्रभाव पहुंच जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा जो 33 करोड़ देवता देवियाँ हैं सबके प्रति जो हमारा आभार है उसको हम चुका सकते हैं। कृष्ण भगवान परम भगवान, ये शास्त्रों का निर्णय। और अर्जुन ने भी यही स्वीकार किया भगवद्गीता में। तो बिना शंका के हम कृष्ण भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। तीसरा नाम अपराध है गुरु के आदेश का पालन नहीं करना है उसे साधारण व्यक्ति समझना। गुरु है एक आध्यात्मिक पोस्टमैन, जैसे कि पोस्टमैन आपके घर में चिट्ठी पहुंचाता है। गुरु का कर्तव्य बनता है कि जो परंपरा का संदेश है उसी को आगे प्रस्तुत किया जाए। और गुरु का आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। रूपा गोस्वामी कहते हैं उपदेश में, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदार पश्चो वेगम, कि गुरु में मन और इंद्रियों पर वश होना चाहिए, फिर वो भगवान के संदेश को आगे दे सकता है। और गुरु की इच्छा क्या रहती है? गुरु की इच्छा ये रहती है कि हर शिष्य भक्ति में आगे बढ़े, भगवत प्रेम अनुभव करे और भगवान के सेवा में जुड़े, भाई नाम में रुचि बढ़ाए, शास्त्रों का अध्ययन करे। शिष्य के मन में भाव होना चाहिए कि जो उपदेश दिया जा रहा है ये मेरी पढ़ाई के लिए है। शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वही गुरु को कहना चाहिए। कई बार शिष्य में भाव होता है कि जो हम सुनना चाहते हैं और अगर वो नहीं सुने तो फिर हम किसी प्रकार से उस उपदेश से बचने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी से जब पूछा गया बनारस में कि आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, आप हमारे साथ बैठकर वेदों वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, क्या ये पागल पागलों जैसे नाच रहे गा रहे हो? महाप्रभु ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख से सोचा और कहा कि तुम्हारे में केवल यही योग्यता है क्या? हरे नाम का उच्चारण करने के लिए। तो गुरु का जो आदेश है वो शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद योगी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हमें वही उपदेश दिया जो कि शास्त्र पर आधारित था और महान आचार्यों की शिक्षा पर आधारित था। जब प्रभुपाद जी ग्रंथों का भी अनुवाद करते थे तो अपने सामने महान आचार्यों के तात्पर्य को रखते थे और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने हमें तात्पर्य दिया जो आप पढ़ते हो ग्रंथों में। तो गुरु की इच्छा ये है कि भगवान के संदेश का हर व्यक्ति पालन करे। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी अब तक हम सब कुछ सीख बैठे हैं, हमें गुरु की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि A galloping horse cannot eat grass of the ground. एक घोड़ा अगर दौड़ रहा है तो जमीन से घास नहीं खा सकता। तो उसी प्रकार अगर हम सोचें कि अभी हमें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, तो ये गलत है। तो गुरु की शिक्षा का पालन करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा, गुरु की इच्छा ये नहीं है कि आप लाख रुपये दान में दो, और गुरु की इच्छा है कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, हरिनाम में रुचि बढ़ाओ, शास्त्रों को पढ़ो, विनम्रता का भाव अनुकूल करो और सेवा का भाव अनुकूल करो। आगे चौथा है वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, ये सोचना कि वैदिक शास्त्र में किसी प्रकार की कमी है। वेद शास्त्र के संबंध और विधेय प्रयोजना, वैदिक शास्त्रों द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान से क्या संबंध होना चाहिए, और वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है वो सनातन संदेश है। तो हमें मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि जो श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का जो संदेश है ये हमारे उद्धार के लिए है। इस संदेश में कोई कमी नहीं, और ये है सनातन संदेश। अफसोस की बात है कि हमारे कई बार पढ़े लिखे हिंदू लोग भी कहते हैं इन शास्त्रों में कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों में कोई कमी नहीं, और वैदिक शास्त्रों का जो सार है वह हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है, जो आवश्यक संदेश है श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गीता और भागवत के संदेश के अनुसार जीवन को बिताएं। पांचवा नाम अपराध है ये समझना कि ये भाई नाम की जो महिमा है ये किसकी कल्पना है। शास्त्र में कहा गया है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो न सेवन 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 लोक जीवन। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, इस कलयुग में हरि के नाम के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। और भागवत में कहा गया है कले दोषे निराजन, कलियुग में दोष ही दोष है, पर कलियुग में एक गुण है क्या, ये हरे कृष्ण भाव। तो दूसरे शब्दों में हरि नाम के उच्चारण के द्वारा ही भागवत प्रेम इस कलियुग में प्राप्त हो सकता है। तो ये सोचना कि हरि नाम के अलावा हमें किसी और मंत्र की आवश्यकता है, बाहर से हरि नाम करो अंदर से दूसरे मंत्र का उच्चारण करो, ये भी अपराध हो जाता है। मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरि नाम के उच्चारण से ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, पर हमें हरि नाम के उच्चारण का विभाव नहीं देना चाहिए। हरि नाम के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, हमें सेवा दो सेवा दो सेवा दो। प्रभुपाद जी कहते थे जिस प्रकार एक बच्चा माँ के लिए रोता है, दिस इज नेचुरल क्राई परम पिता के लिए। सातवां नाम अपराध है हरि नाम के जप के बल पर अपराध करना, ये सोचना कि अब तो हम दीक्षित भक्त हैं, अब तो हम दीक्षित भक्त हैं, हम रोज सोलह माला का जाप कर रहे हैं, हम थोड़ा अपराध भी कर सकते हैं, और क्योंकि हम जाप कर रहे हैं इसे जरूर भगवान को माफ करना ही पड़ेगा, ये भी महान अपराध है। प्रभुपाद जी एक समय दीक्षा दे रहे थे, उन्होंने कहा नाउ नो मोर से नहीं, अब कोई अपराध और नहीं। तो हरि नाम के जाप के बल पर हमें पाप नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने बड़े ईश्वर दिन पर दीक्षा ग्रहण की थी, हम लोग हरि नाम कर रहे हैं तो अगर अपराध भी करेंगे तो हमें माफ भगवान को करना ही पड़ेगा, नहीं। हमारा बहाव होना चाहिए, जो अपराध किए सकिए अपराध आज से हमें कोई अपराध नहीं करना, जानबूझ कर नहीं करना, तो हरे नाम के जप के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। आगे ये नहीं सोचना कि यह हरि नाम का उच्चारण कर्मकांड कार्य के प्रकार है। कर्मकांड एक प्रकार का भौतिक व्यापार है भगवान के साथ। हम ये कहते हैं हम ये दान देंगे, ये सेवा करेंगे, फिर इसके बदले में हमें ये प्राप्त होना चाहिए। फिर यह हरि नाम का उच्चारण कर्मकांड नहीं, हमारे नाम इस भाव से नहीं कर रहे कि हमें ये भौतिक सुख प्राप्त होना चाहिए, भौतिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। हमारे नाम का उच्चारण करने की इस भावना से कि हरि नाम के उच्चारण के द्वारा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और यह नाम हरि नाम के उच्चारण से ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेत दर्पण मार्जनम, जो काम क्रोध दो वो मन मसले का प्रभाव है ये दूर होता है। कर्म करने हमारी रुचि नहीं, नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं झैल को चाहे आप सोने के प्याले से पियो या साधारण प्याले से, एक ही असर होगा। तो कर्मकांड कार्य द्वारा भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। कर्मकांड कार्य एक प्रकार से व्यापार है भगवान के साथ, हम ये करेंगे और बदले में हमें ये सुख प्राप्त होना चाहिए। फिर श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, एक रूप से चैतन्य महाप्रभु ने ये भी कहा है जाड़े ताको ताए कहो, आगे क्या
कृष्ण उपदेश,
जिसे भी तुम मिलो उसे कहो क्या कृष्ण का उपदेश। तो हरि नाम का प्रचार तो हर जगह होता है, हम हरि नाम में जाते हैं वगैरह, पर हरि नाम का जो गहरा अर्थ है वो उपदेश हम दें जब लोगों में थोड़ी श्रद्धा हो हरि नाम में। ये नहीं कि कोई सुनना नहीं चाहता हम जबरदस्ती उसको हरि नाम के लिए गहरा अर्थ। और दसवा है बहुत ही विचारों को बिठाए रखना, दूसरे शब्द में आप दीक्षा ले रहे हो, आप ध्यान जीवन में प्रवेश करते हो इस भावना के साथ कि हमने बहुत ही कार्यों से बचना है, बहुत ही कार्यों के कारण आपको बहुत ही संसार में भटकना पड़ेगा। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं नूनम प्रमता गुरुदेव कर्मा, जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं वो मूर्ख हैं। और अगर हम भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहते हैं जो कि दीक्षा देने का असली उद्देश्य होना चाहिए, हम दीक्षा इस भाव से नहीं लेते कि हम ये सुख प्राप्त होगा ये सुविधा प्राप्त होगी, इस भाव से लेना चाहिए कि हम भगवान के प्रति प्रेम अनुकूल करना चाहते हैं। और इसलिए जो प्रतिकूल कार्य है वो हमें त्यागना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भगवान के चरणागत होने के विषय में कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो त्यागो। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी से बचने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च नहीं करते हो, तो उसी प्रकार जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्याग करो। साथ में जैसे नाम अपराध का हमारे आचार्यों ने एक और अर्थ दिया है वो है ध्यान पूर्वक होकर जप नहीं करना। दूसरे शब्दों में जब आप जप करने बैठते हो तो आपको बड़े ध्यान से जप करना चाहिए, खास करके जब आप अपने 16 माला का कोटा कर रहे हो, जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की तो उन्होंने भक्तों को 64 माला का कोटा दिया था और भक्तों ने प्रयास किया और थोड़े दिन बाद लौटे और कहने लगे, स्वामी जी 64 माला दिन में नहीं हो रहा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, अच्छा 32 माला भी उन्होंने प्रयास किया नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी 32 rounds is difficult also। फिर प्रभुपाद ने कहा 16 rounds and all that's final। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये जिम्मेदारी दी है 16 माला रोज करने के लिए। और एकादशी और दूसरे शुभ दिनों पर 25 माला करनी चाहिए। तो ये जो 16 माला और 25 माला जो आप कर रहे हो, ये माला आपको बड़े ध्यान से करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है कि हमें 24 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो ये हमेशा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको दफ्तर जाना है और दूसरी जिम्मेदारियों को निभाना है। पर कम से कम जो आपका 16 माला का कोटा है और एकादशी को 25 माला, ये महान जाप अगर ध्यान से करोगे तो क्या देखोगे, भौतिक आकर्षण तेजी से पिघलेगा। और अगर ध्यान से नहीं करोगे तो क्या अनुभव करोगे, कि भौतिक आकर्षण वहां ही रहेगा। कभी कभी लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हम इतने समय से जाप कर रहे हैं, भौतिक आकर्षण क्यों नहीं छूट रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हम ध्यान पूर्वक जाप नहीं कर रहे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो आपका जाप है ये ध्यान से कीजिएगा। जो जाप आप करते हो, मोटर चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, साइकिल चलाते हो, उस जाप को अपने कोटा में नहीं खोलना। जो ध्यान से कर रहे हो उसे तो अपने कोटे में लेना। साथ में हम भक्तों को अच्छी साधना रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए जो भक्त मंदिर में रहते हैं वो सुबह मंगल आरती में आते हैं, क्लास में आते हैं। आप सब जो कि आज दीक्षा ले रहे हो, सब घरों में रहते हो, ब्रह्मचारी की दीक्षा रखने के क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त है, तो आप लोगों को घरों में भी अच्छी साधना रखनी चाहिए। मंदिर में मंगल आरती होती है 4:15 बजे, कई मंदिरों में 4:15 बजे होती है। जैसे बेंगलोर तिरुपति में थे, वहाँ 4:15 बजे मंगल आरती होती है। तो अगर आप 4:15 या 4:30 नहीं कर सकते तो 5 बजे कीजिएगा या 5:30। पर ऐसा नियम बनाइएगा कि आप रोज मंगल आरती घर में कर सको। संसार दावा प्रार्थना जो करते हैं, तुलसी पूजा की जो प्रार्थना करते हैं, भगवान नरसिंह देव की जो प्रार्थना करते हैं, और फिर प्रभुपाद जी के गुरु पूजा की प्रार्थना करते हैं, इन प्रार्थना को आप सीखो और घर में करो। घर में ऑल्टर बनाओ, नियमित रूप से ये देखो कि आप जो भी खाओगे घर में भगवान को भोग लगाओगे प्रसाद के रूप में। भगवान गीता में कहते हैं जो भोग लगाए बिना खाते हैं वो केवल क्या, पाप खा रहे हैं। तो हमारा नियम होना चाहिए जो खाएंगे तो क्या खाएंगे, केवल प्रसाद खाएंगे। तो और प्रसाद कैसे अर्पण करते हैं, केवल तुलसी के पत्ते के साथ नहीं, गुरु का मंत्र 3 बार, प्रभुपाद का मंत्र 3 बार, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र 3 बार, भगवान कृष्ण का मंत्र 3 बार, हरे कृष्ण मंत्र 3 बार। तो मंत्रों के उच्चारण से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिएगा। और प्रसाद खाओगे तो बुद्धि भी ठीक रहेगी। अगर हम भोग लगाए बिना खाएंगे तो बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। अगर हम उनके हाथों का खाएंगे जिनकी बुद्धि जो बुरे विचारों में जुड़े हैं, तो चेतना हमारे हृदय में भी आ जाएगी। इसके लिए ये आवश्यक है कि जो दीक्षा ले रहे हैं, ले चुके हैं, लेना की लेने की इच्छा रख रहे हैं, वो खाएं तो प्रसाद खाएं। साथ में शास्त्रों का अध्ययन। 16 माला का जाप सबसे महत्वपूर्ण है, पर साथ में हमें शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। शास्त्र में है भगवान की वाणी। पकड़ापंडी ने बड़े प्रयास और परिश्रम से इन ग्रंथों का अनुवाद किया है, तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए। मंदिरों में लोकसभा भगवत का अध्ययन किया जाता है, शाम को भगवत गीता का। तो जो घर में रहते हैं उन्हें भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो बुद्धि भी तेज होगी और माया का विरोध कर सकोगे। पर अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान कम रहेगा, कम ज्ञान से माया का विरोध कठिन हो जाएगा। तो शास्त्रों का पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। ये 16 माला का करना सबसे आवश्यक है, और साथ में शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे जब भगवान देखते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है, मुझे इसे बुद्धि देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। तो शास्त्र का भी अध्ययन कीजिए, और साधु संग ये भी आवश्यक है। तो केदार मंदिर आओ, आपके दिल्ली में 8 मंदिर हैं, कई स्थानों में नामाज भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम होते हैं, तो भक्तों की संगत का लाभ उठाओ और सेवा में जुड़ो। हम हरि नाम के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सेवा है प्रचार की सेवा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आप सब जो कि हरि नाम दीक्षा ले रहे हो, जैसे हमने आरंभ में कहा था, बड़े शुभ दिन पर ले रहे हो, शुभ अवसर पर, तो आप इस दीक्षा का पूरा लाभ उठाओगे। हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए अब दीक्षा प्राप्त कर लिया, अब हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं। कई बार कभी कभी हम देखते हैं कि दीक्षा से पहले बहुत बड़े उत्साहित होते हैं और दीक्षा के बाद ये सोचते हैं कि अब तो जो चाहिए था मिल गया, अब ढीले हो जाते हैं। ढीले हो जाओगे तो आपकी भक्ति खुद ही कमजोर हो जाएगी। दीक्षा प्राप्त कहते थे ओनली द बिगिनिंग नॉट द एंड। दीक्षा के माध्यम से आपकी भक्ति आरंभ हो रही है, समाप्त नहीं हो रही। तो हमें बड़ी गंभीरता के साथ शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए, और जो शास्त्रीय शिक्षा है उसका लाभ उठाना चाहिए, जिसमें एक है साधु संग, साधु संग का लाभ उठाना चाहिए। आज के दीक्षा प्रोग्राम में अनेक भक्त ब्राह्मण दीक्षा में स्वीकार कर रहे हैं, हमें ब्राह्मण बनना चाहिए गुणों पर आधारित। चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभाग, तो गुणों के आधार पर हम ब्राह्मण बनते हैं। तो जैसे मैंने कहा था हमें ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो कम से कम कई सालों के लिए हरि नाम का उच्चारण हो, अच्छा चरित्र हो, शास्त्रीय ज्ञान भी हो। ऐसे ब्रह्मचारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो भक्ति शास्त्र भी पास करना चाहिए। तो इस कौन संस्था में ब्राह्मण दीक्षा गुणों पर आधारित प्राप्त होती है, और भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। समो दमो तपो सोचम शांति रजोम एव च ज्ञान विज्ञान अस्ति ज्ञम धर्म कर्म स्वाहा। ब्राह्मण को शांत होना चाहिए, पीसफुल, ब्राह्मण इज पीसफुल। और शांत हो गए अगर आपका मन एकमात्र भाव है क्या भगवत सेवा, फिर नमो मन और इंद्रियों पर वश होना चाहिए। ये नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए और हम असुर और हम कर्मियों का कार्य करें। मन और इंद्रियों को वश में लाना है, ये नहीं कि हम उनके दास बने, गोस्वामी बनना है, फिर तपो तपस्या, भगवान गीता में कहते हैं तीन चीजों को कभी त्याग करना नहीं चाहिए, यज्ञ, दाना और तपस्या। तो कलयुग में सब तपस्या क्या है? वीर द्वारा हरि नाम का उच्चारण करो, वीर द्वारा सत्य का उच्चारण करो और चाणियों का पालन करो। ध्रुव महाराज ने बहुत हरी तपस्या उठाई थी, वो तक उस प्रकार की तपस्या हम नहीं उठा सकते इस कलयुग में। खाना है तो कृष्ण प्रसाद था। तो तपस्या द्वारा भक्ति बढ़ती है और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है जब हरि नाम का उच्चारण करो। फिर सोचम पवित्रता, तुम बाबा जी कई बार कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स, तो पवित्रता ही ऐसी शक्ति है। और ब्राह्मणों को पवित्र बनना है, हम सबको पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? साधना भक्ति की आवश्यकता है। तो ये नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हो गई तो हम लापरवाही से भक्ति करना है। ब्राह्मण को बड़े ध्यान से इन नियमों का पालन करना चाहिए। फिर सहनशील, ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित हो जाए। ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता, सोचता है कि सारे दोष मेरे में ही हैं। अक्सर हम सोचते हैं सारे दोष दूसरों में हैं, रामायण में सारे कौन है, पर ब्राह्मण किसी स्थिति में कभी दोष नहीं देता किसी को और हर स्थिति में शांत रहता है। और सत्यता, ज्ञान, कि ब्राह्मण को ज्ञान होना चाहिए। तो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम भगवान के आचार्य गण की सेवा कर सकते हैं। और हमें नाम के ब्राह्मण नहीं पर असली ब्राह्मण बनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु पहले महान आचार्य थे जिन्होंने ये स्थापित किया कि हम ब्राह्मण बनते हैं गुणों पर आधारित, जन्म के आधारित नहीं। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, तो उन्होंने विदेशियों को भी ब्राह्मण दीक्षा दी। तो भारत में कई पंडित कहने लगे स्वामी जी ने हमारी संस्कृति खराब कर दी है। तो स्वामी जी ने शास्त्रों के आधार पर ये बताया कि हम ब्राह्मण बनते हैं गुणों पर आधारित। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं वो असली ब्राह्मण बनेंगे, नाम के ब्राह्मण नहीं। और अगर असली ब्राह्मण बनेंगे तो भक्ति में भी आगे बढ़ सकोगे। और जो ब्राह्मण दीक्षित हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के आचार्य विग्रह की सेवा में मिल जाए। तो दीक्षा प्रोग्राम कई भक्त राम दीक्षा दे रहे हैं, हमारी यही विनती है कि आप गंभीरता से जिम्मेदारी को स्वीकार करना। ब्राह्मणों को ज्ञाति मंत्र दिया जाता है जो कि दिन में तीन दफा करना चाहिए। और ये ज्ञाति मंत्र प्राप्त होता है गुरु से। तो जो ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं वो असली ब्राह्मण बने और प्रयास करें भगवान के प्रचार को बढ़ाने में। हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, बने नहीं हैं पर बनने का प्रयास कर रहे हैं। और वैष्णव के विषय में कहा गया है परा दुखा दुखी, दूसरों को जब वो दुखी देखता है कि लोग बहुत ही कार्य में जुड़े हैं तो उनका भाव ये रहता है कि उनको भी दिव्य ज्ञान दिया जाए। तो वैष्णव में प्रचार की भावना रहती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ये प्रचार कीजिएगा, ग्रंथों को बांटिएगा, घर घर जाकर प्रचार कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाने का जाने का बताए कहो कृष्ण बोले।
जिससे कि तुम लोग मुझे क्या करो, कृष्ण को उपदेश दो। तो नवीनता से अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिएगा, शास्त्र को पढ़ेगा, साधु संघ का लाभ उठाएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या कहा है, नाथ भी सुनी चेना रो रही सजा मानी ना माना देना सदारी। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि हमें गले में लगा देना चाहिए इस श्लोक को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर आप सदा हरि नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो हमें सहनशील होना चाहिए, दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए, और अपने आप को घास से भी ज्यादा प्रतीत मानो। और अगर ये विनम्रता का भाव अनुकूल करोगे तो फिर ये हरि नाम का उच्चारण आप कर सकोगे सदा। और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे विनम्रता के भाव अनुकूल हो। शास्त्र में आप पढ़ते हो 26 गुण जो भक्त में होने चाहिए, तो इन गुणों का अनुकूल करो। और ये सब संभव हो सकता है अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करोगे, अच्छी साधना रखोगे, चार नियमों का पालन करोगे। जब आप इन चार नियमों का पालन करते हो, ये चार नियम भक्ति के खंभे बन जाते हैं। जब हम इनसे इनका पालन नहीं करते तो पाप के साधन बन जाते हैं। तो ये जो नियम है ये हमारी भलाई के लिए है। कई बार लोग कहते हैं इसका में तो अनेक बंधन है, देखो हमारी हमारे हमें छूट दे रहे हैं। ये जो नियम है ये भगवान ने दिए हैं, और इस परंपरा का गुण ये है कि हमारे आचार्यों ने भगवान के संदेश को किसी रूप से बदला नहीं। तो आप सब श्रद्धालु हो, भाग्यवान हो, क्योंकि भाग्य में जुड़े हो। और कृपा करके इस शिक्षा का लाभ उठाना, ग्रंथों का अध्ययन करना, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना। हरे कृष्ण।